نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص इलाही आमीन। आज जिस आयत को मैंने मुंतखब किया है अपने लिए भी और आपके लिए भी, वो आयत का एक हिस्सा है। ठीक है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 259 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आपको लगता है ये ईमान है, ये यकीन है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो है हम सबका कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन बाज़ों का मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यकीन में कमी आती है। और आज जो टाइम चल रहा है उसमें ये फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, कि ये हो सकेगा, क्या ये होगा, ये काम हो जाएगा या नहीं होगा। ये फीलिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं और हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये सोच जो है पीछे जाती जा रही है। तो इसी से रिलेटेड एक वाक्या जो है मैं आपके सामने रखूँगी, उस वाक्य को आप सुनेंगे अच्छे से और इंशाल्लाह ताला उससे जो सीखेंगे फिर वो मैं भी आपको बताऊँगी और आप ख़ुद भी मुझे बताएंगे कि आपने क्या सीखा और फिर करना क्या है हमें। हम सीखते तो बहुत कुछ हैं अपनी ज़िंदगियों में। पर्ल्स ऑफ कुरान जो है आप माशाल्लाह से बहुत सारे टीचर से आप सुन चुके हैं, मुख्तलिफ़ आयात मुख्तलिफ़ असबाक आप सुन चुके हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं, सुनते जा रहे सुनते जा रहे, लेकिन हमें करना क्या है अपनी ज़िंदगी में? हमने वो सीख कर उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे महसूस करना है ये हमें देखना है। अब एक बहुत अच्छा वाक्या मैं सुन रही थी तो मेरा दिल किया था कि, और मैंने नियत भी की थी यही कि मैं इंशाल्लाह ताला जब आपसे मुलाकात करूँगी तो इस वाक्य को मैं आपसे ही शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस चीज़ के लिए मुझे मौका भी दिया, तैयारी भी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका दिया कि आपके सामने बैठी हूँ और आपको आज इंशाल्लाह ताला ये वाक्या सुनाऊंगी। वाक्या कुछ इस तरह से है कि 9 हिजरी में एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम ये है शिदरातुज़्ज़हब फ़ी अखबारी मन ज़हब, ये किताब का नाम है। इंशाल्लाह ताला आप अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उस किताब में एक शख्स का वाक्या आता है जिनका नाम है अबू बकर बिन अब्दुल बाकी रहिमहुल्ला। ठीक है, अबू बकर बिन अब्दुल बाकी रहिमहुल्ला, इनका वाक्या जो है ये ख़ुद बयान करते हैं अपना, ये वाक्या अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम वाक्या ये ख़ुद बयान करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। ये नौजवान थे और माली तौर पर कमज़ोर थे, काफ़ी कमज़ोर थे, और उन्हीं दिनों में अल्लाह ताला ने इनको ये सआदत बख्शी कि इनको हज का पैगाम आया और ये हज पर रवाना हुए, बैतुल्लाह गए, मक्का गए, बैतुल्लाह गए, वहाँ जाके इन्होंने हज किया माशाल्लाह से। अपने साथ कुछ राशन लेकर भी निकले थे, जाहिर सी बात है सफ़र पर निकले तो कुछ ना कुछ आप अपने साथ फूड स्टफ लेकर निकलते हैं। जब ये निकले हैं, हरम पहुँचे हैं, वहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह से हज अदा किया, हज अदा करके जितना भी इनके पास जो राशन था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। अब ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब चूंकि माली तौर पर भी कमज़ोर थे तो हज से जब ये फारिग हुए तो अब ये वापस अपने घर को नहीं लौटे, वहीं पर इन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ दिन यहीं कयाम करता हूँ मक्का में ही। ये मक्का में ही थे कि अचानक अभी इनको परेशानी थी कि मेरे पास खाना भी नहीं है, माल भी नहीं है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो कहते हैं कि उन्हीं दिनों में भूख प्यास शिद्दत ऐसी थी कि मैं अपने घर से निकला और निकल के मैं मक्का की गलियों में घूम रहा था। कहते हैं कि मक्का की गलियों में घूमता घूमता मुझे अचानक से मक्का की गली में एक थैला नज़र आया, एक शॉपर नज़र आया। मैं हैरान हुआ कि ये शॉपर किसका है, और वो थोड़ा वज़नी भी इनको फील हुआ जब इन्होंने उठाया तो वो वज़नी महसूस हुआ। उस शॉपर को जब इन्होंने उठाया तो ये अपने साथ इन्होंने सोचा कि मैं घर ले जाता हूँ, घर जाके इसको चेक करता हूँ कि इसमें है क्या। अब जब ये अपने घर पहुँचे और घर जाके इन्होंने उस शॉपर को खोला, यानी उस थैले को खोला, तो उसमें एक बहुत कीमती हार निकला। वो हार देख के बहुत हैरान हुए, कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत इतना यूनिक हार अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो वो हार इन्होंने देखा और उसके बाद इन्होंने अपने पास उसको रख लिया, उस अमानत को रख लिया। फिर ये बाहर निकले अपने इसी वापस ये हरम की तरफ जा रहे थे, तो कहते कि मैं जब हरम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग शेख जो मुझे नज़र आया, जो निदा लगा रहा था, जो आवाज़ लगा रहा था कि लोगों सुनो, मेरे घर वालों का हार खो गया है, किसी को अगर मिला है तो मुझे बताए, मैं उसको 500 दिनार दूंगा। तो इन्होंने ये सुना तो फिर इन्होंने दिल में सोचा कि मुझे भूख भी लगी हुई है, मेरे पास माल भी नहीं है और हार भी मेरे पास है, मैं इस शख्स को इसका हार लौटा देता हूँ और 500 दिनार मुझे मिल जाएंगे तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये उस बुज़ुर्ग शेख के पास जाते हैं और जाके उनका बाजू पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे साथ चलें मेरे घर, तो मैं आपको आपकी अमानत लौटा दूंगा। तो बुज़ुर्ग कहते हैं ठीक है। अब ये उस बुज़ुर्ग को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचते हैं। अब घर ले जाते हैं तो कहते हैं कि देखें, मेरी 3 सवाल हैं आपसे, अगर आपने वो 3 सवालों के जवाब सही से दे दिए मुझे तो मैं आपको आपकी अमानत, आपका हार लौटा दूंगा। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं जी पूछे, आप क्या सवाल है। इन्होंने पहला सवाल ये किया कि आप मुझे उस थैले की निशानी बताएं कि आया वो थैला है किस किस्म का है। दूसरा सवाल ये है कि जिस चीज़ से उस थैले को बांधा गया था वो किस चीज़ का है, उसकी क्या निशानी है। और तीसरी चीज़ ये है कि उस हार की निशानी बताएं कि जिससे मैं मानूं कि वाकई वो हार आपका है। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि ठीक है, पहले सवाल का जवाब ये है कि वो थैला जो है वो रेशम का है, और जिस चीज़ से उस थैले को बांधा गया है वो भी रेशम का है, और उस थैले में जो हार है उस हार में 30 नग लगे हुए हैं। तो अब ये तो उनको नहीं पता था कि नग कितने हैं उसमें। जब इन्होंने सुना कि 30 नग लगे हुए हैं तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। इन्होंने वो हार निकाला, उसकी काउंटिंग की, नगों की काउंटिंग करके जब इन्होंने देखा कि हाँ ये पूरे 30 नग लगे हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि जी ये लीजिए आपकी अमानत, ये मेरे पास है, ये मुझे मिला था मक्का की गली में। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये 500 दिनार तुम्हारी है, मैंने वादा किया था कि ये दूंगा उस शख्स को। तो इन्होंने कहा कि मैं ये 500 दिनार आपसे नहीं ले सकता। अचानक इन्होंने अपना माइंड चेंज किया और उन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा कि मैं आपसे 500 दिनार नहीं ले सकता। तो जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि मैंने वादा किया था कि जो शख्स मुझे मेरा हार लौटाएगा मैं उसको 500 दिनार दूंगा, आप मना क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने आगे से कहा कि देखिए, ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है, इसके अजर की उम्मीद भी मैं अब अल्लाह से रखता हूँ, तो मुझे आपके 500 दिनार नहीं चाहिए, और बहैसियत मुसलमान मेरा फ़र्ज़ था कि जिसकी ये अमानत है मैं उस तक इसको पहुँचा दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपकी अमानत मिल गई है, तो अब आप इसको ले जाएं। बुज़ुर्ग जो है ना वो कहते हैं, वो काफ़ी देर तक उनसे कहते रहे कि आप ले लें बेटा, आप ले लें, आपने मेरा माशाल्लाह से अपनी मेरी अमानत मुझ तक पहुँचाई, तो आप ले लें। लेकिन ये बजियद रहे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने अजर की उम्मीद किससे रखी है, अल्लाह से, मैं सिर्फ अल्लाह से मांग रहा हूँ कि मुझे अल्लाह से अजर चाहिए, तो मुझे आपसे अजर नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है वो बुज़ुर्ग जो है वो कहते रहे, फिर वो चले गए वहाँ से। अब वो चले तो गए, अब ये भी वहाँ से निकले, हरम से निकले और अपने घर लौट गए। कुछ अरसा गुजरा, कुछ साल गुजर गए, काफ़ी टाइम गुजरा। तो चूंकि ये माली तौर पर कमज़ोर थे तो इनको दिल में आया कि अब मुझे अपनी तिजारत के लिए निकलना चाहिए, बिज़नेस ट्रिप के लिए निकलना चाहिए, ताकि मैं अपने माली हालात कुछ बेहतर कर सकूं। अब ये निकलते हैं सफ़र तिजारत के लिए, हिंद की तरफ इन्होंने सफ़र किया। तो जब ये निकले हैं और जिस कश्ती में ये सवार थे, तो कहते हैं कि मैं जिस कश्ती में सवार था, मेरे साथ और भी बहुत से लोग सवार थे उस कश्ती में, तो हम कश्ती में थे और अचानक से एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया और उस तूफ़ान ने हमारी कश्ती को बहुत बुरी तरह हिट किया। अब वो कश्ती का नुकसान इस तरह से हुआ कि समंदर का पानी कश्ती में आ गया। कहते हैं कि बंद जो कश्ती के थे वो टूट गए, यानी कश्ती यूँ समझ लें कि वो बिल्कुल ख़त्म होने लग गई, वो टूटना शुरू हो गई। और जो लोग थे, कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मदद के लिए। और कहते हैं कि मेरे हाथ जो है कश्ती का एक तख्ता लग गया, मैंने उसको पकड़ लिया मजबूती से कि इसके सहारे जो है मैं किसी किनारे तक पहुंच जाऊंगा। अब किनारा तो कोई समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस ये चलते रहे उस तख्ते के साथ। फिर कहते हैं कि मैं एक जज़ीरे तक पहुंचा, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस जज़ीरे तक पहुंचा दिया। मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पर आबादी है इंसानों की। अब मुझे वहाँ इंसान नज़र आए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग हैं, कुछ इंसान तो हैं। तो जब आगे गए तो देखते हैं कि मस्जिद भी है, तो इनको ये भी यकीन हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कौन लोग आबाद हैं, मुसलमान। अब इनको ये भी शुक्र अदा हुआ कि यहाँ मुसलमान है तो मस्जिद भी है सामने। अब ये वहाँ से आगे जाते हैं और मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाके इन्होंने वुज़ू किया, फ़्रेश हुए, वुज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کر کے وہیں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے نا، یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ پڑھتے رہے کافی دیر تک. پیچھے ایک شخص جو تھا نا، وہ ان کو سن رہا تھا، اب وہ قرآن سنتا رہا. تو جب یہ فارغ ہوئے قرآن سے، وہ شخص ان کے پاس آتا ہے اور آ کر ان کو پوچھتا ہے کہ آپ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، اس شخص نے تعریف کی آتے کے ساتھ، پوچھا نہیں آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، بس کہا آپ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا آگے سے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اور آپ آئے کہاں سے ہیں، آپ یہ بتائیں. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے میں یہاں پہنچا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کیونکہ ہمارے علاقے میں، ہمارے جزیرے میں اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اتنا اچھا کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے، اور آپ اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں تو مجھے حیرانی ہوئی. تو پھر یہ شخص کہتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں، آپ کے بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پڑھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ مجبور بھی تھے، وہاں پر مسافر بھی تھے، تو ان کے پاس کوئی اور کام بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. اب انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن پڑھانا شروع کیا بچوں کو، اور الحمدللہ اس علاقے کے کافی بچے اس مسجد میں ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آ گئے. اور یہ آہستہ آہستہ یہ قرآن پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا، اور یہ کافی ٹائم تک وہاں قرآن پڑھاتے رہے. اب یہ قرآن پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، کچھ ٹائم گزرا، اب ماشاء اللہ وہاں بچے قرآن پڑھنا سیکھ گئے تھے. ان کو خیال آیا کہ اب تو مجھے واپس جانا چاہیے، میں تو تجارت کے سفر کے لیے نکلا تھا، میں کہاں پہنچ گیا، تو اب مجھے واپس جانا چاہیے، اپنے بارے میں بھی سوچوں، اپنی تجارت کے بارے میں سوچوں. اب شادی شدہ بھی نہیں تھے، تو یہ نیڈ بھی انسان کو ہوتی ہے کہ مجھے شادی بھی کرنی ہے. اب اس بارے میں یہ سوچ رہے تھے. پھر انہوں نے جیسے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ کے بچے قرآن پڑھنا سیکھ گئے ہیں، اتنا اب تو اتنا سیکھ گئے ہیں کہ وہ آگے پڑھا سکتے ہیں، تو مجھے اجازت دیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں. لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیں میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرا بزنس بھی نہیں ہے، میرا گھر بار بھی نہیں ہے، تو مجھے جانے دیں آپ. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، ہم آپ کی شادی کروائیں گے، آپ کو گھر بھی دیں گے، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جیسا اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا اور اتنا اچھا انسان جو ہے، ہم آپ کو نہیں کھونا چاہتے، آپ کو نہیں گنوانا چاہتے. اب انہوں نے سوچا کہ چلے الحمدللہ شادی بھی ہو رہی ہے میری، یہ اور مجھے گھر بھی دے رہے ہیں، تو پھر میں یہیں رہ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ایک یتیم بچی ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ مالدار ہے، کافی مالدار ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے کر دیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ان کا نکاح ہو جاتا ہے اس لڑکی سے، ان کی شادی ہوتی ہے. اور شادی ہوتی ہے، جیسے یہ پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، اور جیسے چہرے کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے ان کی نظر اپنی بیوی کے گلے پر جاتی ہے. اور ان کی بیوی نے وہی ہار پہنا ہوا تھا جو ان کو مکہ کی گلیوں میں ملا تھا. یہ بڑے حیران ہوتے ہیں، بہت پریشان بھی ہوتے ہیں، حیرانی اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تھوڑا ٹائم یوں نکلتا ہے بیوی کے ساتھ الحمدللہ. پھر کچھ ٹائم بعد جو ہے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ سب خیریت ہے، خوش ہیں، مطمئن ہیں، سب ٹھیک ہے، گھر سب ٹھیک ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، گھر سب ٹھیک ہے. سوال پوچھتے ہیں نا کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب بہت اچھا ہے، میری بیوی بھی بہت اچھی ہے، گھر الحمدللہ، ہر کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن ایک سوال ہے، ایک پریشانی ہے جو میں بہت پریشان ہوں، ایک سوال ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا سوال ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک ہار دیکھا ہے، وہ ہار جو ہے مجھے مکہ کی گلیوں میں ملا تھا، تو میری بیوی کے پاس کیسے ہے؟ میں بھول نہیں سکتا اس ہار کو، مجھے اچھے سے یاد ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو وہ ہار کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ مکہ کی گلیوں میں ملا تھا، ایک شخص کا کھو گیا تھا، پھر میں نے اس کو لوٹایا تھا واپس. اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ کہیں وہ پہلی رات ہی جو ہے یہ نہ سوچے کہ لالچی انسان ہے، کہ آتے کے ساتھ ہی مجھ سے ہار کا سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہار کہاں سے آپ کے پاس آیا، تو کہیں وہ مجھے لالچی نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے میں نے ان سے حیا کی وجہ سے میں نے سوال نہیں کیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے نا اسی وقت تکبیر کہی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بلند آواز کے ساتھ. تو یہ بھی ہے، ان کو بھی حیرت ہوئی کہ ایسا کیا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ تم وہ نوجوان ہو، وہ نوجوان تم ہو. تو उस कहते हैं कि इस लड़की का जो बाप है वो इस इलाके का एक बहुत बड़ा आदमी था, और अक्सर जो है ना वो हमारे इलाके में कहानी सुनाया करता था। वो कहा करता था कि एक नौजवान मुझे मिला था, वो बड़ा नेक नौजवान था, ऐसा नौजवान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा नौजवान नहीं देखा, ऐसा जो नेक नौजवान जो था मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर उस शख्स ने हमें पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह से उसकी वो एक चीज़ खोई और उस तक उसने पहुंचाई। लोग इनको कह रहे हैं कि वो जो बुज़ुर्ग थे वो अल्लाह से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह उस नौजवान से मेरी बेटी की शादी करवा दे। ये दुआ जो है वो बुज़ुर्ग किया करते थे। और आज अल्लाह ताला ने जो है आपको यहाँ पर हमारे पास भेज दिया, अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है। आप निकले थे कहाँ? तिजारत के लिए। लेकिन अल्लाह ने आपको कहाँ भेजा? क्योंकि उस बुज़ुर्ग ने क्या दुआ की थी कि अल्लाह उस नौजवान से मेरी बेटी की शादी कर दे। तो अल्लाह ताला ने इनको फिर इस तरह से ही यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, अब ये तो इनका मसला हल हो गया कि ये हार कैसे इनकी बीवी तक पहुँचा। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि हमारा टाइम निकलता रहा, तो कुछ टाइम बाद जो है थोड़ी माली तंगी हम पर आई, तो मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया, बीवी से मशवरा किया कि देखिए तंगी है तो अब क्या किया जाए। तो एक हार ही इनके पास था, तो उन्होंने कहा कि चलिए इसको बेच देते हैं। उस हार को जब इन्होंने बेचा है तो उसकी जो कीमत मिली है इनको वो तकरीबन 5 लाख दीनार, 5 लाख दीनार के एवज ये हार इनका बिका। जब इनको हार मिला था उस टाइम पर उसके बदले इनको कितने दीनार मिल रहे थे? 500 दीनार। और जब आज ये हार बेच रहे हैं खुद तो इनको कितने मिल रहे हैं? 5 लाख दीनार। क्यों? क्योंकि इन्होंने किससे अजर की उम्मीद रखी? अल्लाह से। तो ये जो वाकया था आपको सुनाने का, कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इनको हार नहीं दिया, इन्होंने जब अल्लाह से अजर की उम्मीद रखी, इनको जब ये यकीन था कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और उस बुज़ुर्ग को भी यकीन था कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह एहसान करने वालों का अजर भी ज़ाया नहीं करता है। तो आप देखिए, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इनको हार दिया बल्कि हार वाली भी दी। अल्लाह ने इनको हार दिया, हार वाली भी दी, और इनको सेटल भी किया। क्या वो सबब बना कि वो निकलते हैं? और उस टाइम पर इन्होंने जो कुर्बानी दी, भूखे भी थे, प्यासे भी थे, ज़रूरत भी थी, ये चाहते तो ले सकते थे 500 दिनार, लेकिन थोड़ा रुक गए। हम दुआएं बहुत करते हैं अल्लाह से, और हम देखते हैं कि आज परेशानियां भी बहुत हैं, तंगी भी बहुत है। यकीन ईमान तो है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन यकीन में बहुत कमी है हमारे। ऐसा यकीन, ऐसा तवक्कुल जो है ना हमारी ज़िंदगियों में कम होता जा रहा है। इस वजह से जो है ना हमारी ज़िंदगियों में जल्दबाजी बहुत आती जा रही है। उस जल्दबाजी की वजह से हमें लगता है कि हमारी दुआएं जो है ना वो काम नहीं कर रही हैं, उनका असर हम पे नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में ज़रूर डालेगा, क्योंकि वो उसको चेक तो करेगा ना। कुरान में भी तो हम क्या पढ़ते हैं कि अल्लाह आपको आजमाएगा ज़रूर, आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपने नियत की है ना अल्लाह के रास्ते में किसी भी चीज़ की, तो अल्लाह पहले आपको आजमाएगा, और आजमाने के बाद अगर आप साबित कदम रहे तो यकीन रखें कि अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। इस जुमले को हम अपने पास लिख लें कि अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा, बस मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं उस पर तवक्कुल करूँ, मैं उस पर यकीन रखूँ। हम क्या करते हैं, हम अगर कोई भी नेकी करते हैं, हम कोई भी नेकी करते हैं, तो हम अगर किसी इंसान के साथ भी कोई नेकी कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि मुझे इससे अजर मिले, ये मुझे शुक्रिया अदा करे, मुझे कुछ कहे, या मुझे इसके बदले ये मिलेगा। होती है कि नहीं होती? जहन में ये चीज़ होती है। लेकिन अगर उस टाइम पर आप ये नियत रखें कि मेरा अल्लाह मुझे अजर देगा इंशाल्लाह, और आज इस चीज़ की इतनी कमी है, देखती हूँ कि इवन खुद भी कि सोचे, इतनी ज़्यादा शैतान हम पे गालिब कर रहा होता है, इतनी हावी होती हैं। हम किसी भी इंसान के साथ कोई अच्छा भी काम करते हैं, किसी के साथ कोई नेकी, कोई भलाई का काम करते हैं, अगर वो बदले में हमें कुछ अच्छा ना दे, कुछ अच्छा ना करे, तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? बदगुमान हो जाते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं, कुछ बुरा सोच जाते हैं अपने दिल में। अच्छा, सबसे पहले दिल जो है ना आपका, वो दिल जो है ना थोड़ा कुड़न का शिकार होता है, और फिर उसके बाद आपकी ज़बान। और आज सबसे ज़्यादा हम देखें तो जो दो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं वो दिल और ज़बान है। असर दिल पे हो रहा है और उसका जो इजहार है वो ज़बान से हो रहा है। اور اس وجہ سے ہر گھر کے اندر قرآن پڑھنے والوں کے بھی, یہ نہیں ہم سوچیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں تو ہمارے گھروں میں سب سکون ہے. ہم خود بھی پریشان ہیں کہ سکون کیوں نہیں. اور ایک اور چیز جو مجھے اس واقعے سے جو فیل ہو رہی تھی کہ ہم دیکھیں کہ ان کو جو اعزاز ملا, اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے اسی علاقے کے بہت معزز شخص بنے اور ان کو قاضی مقرر کر دیا گیا تھا. اور اب دیکھیں نا کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے بارے میں یہ ان کا جو واقعہ یہ خود بیان کریں گے وہ اتنے ٹائم بعد جا کے بھی یوں اس طرح سے لوگ سنیں گے, لوگ پڑھیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. تو نیت کا جو اخلاص ہے نا کہ ہر کام جو ہے نا اللہ کی خاطر کریں, کسی سے اجر کی امید نہ رکھیں, اور دلوں میں جو تنگی آ رہی ہے نا اس دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اور اگر کوئی نیکی کرتے ہیں اجر نہیں ملتا ہے تھوڑے رک جائیں, کوئی دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی تھوڑے رک جائیں, سوچیں اور انتظار کریں کہ انشاءاللہ میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا. اس کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے اللہ نے اور ہوگی قبول. یہ یقین رکھیں اپنے اندر. آج یقین کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت بہت زیادہ. ہم یہ آیت, یہ جو حصہ میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن کبھی کبھی ہمیں اتنی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا میرے ساتھ ایسا, میری زندگی میں یہ کمی کیوں پوری نہیں ہو رہی ہے, میری زندگی میں یہ غم کیوں نہیں نکل رہا ہے, میری زندگی کی یہ پریشانی کیوں نہیں نکل رہی ہے. یہ سوال نہیں آتا دن میں کتنی بار ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں, لیکن ہم اللہ سے یہ سوال نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں نہیں صبر کر رہی ہوں, اللہ مجھے صبر کیوں نہیں آ رہا, مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا. اور دیکھیں آج چونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, یہ جو ٹائم مدرسے میں ہم گزارتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارتے ہیں, لیکن جب ہم گھروں کو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اتنی ڈسٹریکشن ہے اتنی زیادہ کہ ہم ذرا سا اگر موبائل پہ بھی لگتے ہیں تو ہم کوئی ایک چیز سن رہے ہیں تو ہم دوسری چیز کو بھی دیکھ لیں, تیسری چیز کو بھی دیکھ لیں, ہم بہت ڈائیورٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ پھر ہمارے اندر ہماری زندگی میں کچھ ایسے بھی گناہ ہو رہے ہیں ہم سے جن کا ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں, یا پھر ہمارا قرآن پڑھنا جو ہے وہ صرف ہمارے ساتھیوں کے درمیان ہے یا ہمارے مدرسے میں ہے, ہماری پرسنل لائف جو ہے وہ ہم صرف مجھے پتہ ہے, لائک یعنی میری جو پرسنل زندگی ہے وہ صرف مجھے پتہ ہے, آپ کی زندگی آپ کو پتہ ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں. آج خشیت کتنی کم ہوتی محسوس ہو رہی ہے, اللہ کا جو ڈر ہے, اللہ والے کتنے کم محسوس ہو رہے ہیں اپنے آس پاس. تو کیوں ہم نہیں اللہ والے بن سکتے, ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ لوگ ہمیں دیکھے تو ان کو اللہ یاد آ جائے, یہ نہیں آ سکتے. آپ دیکھیں کہ یہ نوجوان جو تھے یہ وہاں مسجد میں بیٹھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, اور وہ شخص ان کا قرآن سن کے ان کو آتے کے ساتھ کیا کہتا, آپ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور آپ ہمارے بچوں کو قرآن سکھائیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھیں اجر کی, لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں. دیکھیں لگتی ضرور ہیں امیدیں, ہم لگاتے ضرور ہیں, لیکن پھر بھی اپنے دل سے یہ کہیں کہ مجھے اجر اللہ سے چاہیے. دل تنگ بھی ہوتا ہے نا تو بھی اس دل کو بولیں کہ نہیں مجھے اللہ کی خاطر اس کو وسیع کرنا ہے, اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے, کثرت سے اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں, اللہ کو نہ بھولیں. کیوں جو رب اتنے صدیوں پہلے ان کے لیے یہ معجزے کر سکتا ہے وہی رب تو آج بھی ہے نا, وہی رب ہمارے لیے بھی تو معجزے کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس پر یقین رکھیں, ہم سب یقین رکھیں. غم تکلیفیں آزمائشیں پریشانیاں دکھ اور بھی پتہ نہیں ڈپریشن مایوسی, ان سب کا علاج کس میں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, بس توکل کریں اللہ پر ان شاء اللہ تعالیٰ. Exactly, یہ چیز میں اکثر سوچتی ہوں. بہت اچھی بات کہ دو انہوں نے ایک اسپارک نکالے, انہوں نے کہا کہ وہ جو نوجوان تھے انہوں نے اپنی جو بیسک نیڈس تھیں جو ان کی ترجیح تھی اس کو چھوڑ کے انہوں نے امید اجر کی امید کس سے رکھی, اللہ سے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اجر دے گا, اور اس چیز کے لیے انہوں نے انتظار بھی کیا. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اللہ پہ توکل کیا حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے, اور ان کا جو توکل تھا ان کی جو دعائیں تھیں وہ ان کے مرنے کے بعد پوری ہوئی ہیں. आप ये देखिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी दुआएं जो है हम कर रहे होते हैं वो ज़िंदगी में कबूल नहीं होती हैं। वो उनका अजर, उनके समरात अल्लाह ने कब लिखे हैं हमें नहीं पता है। इस चीज़ के लिए भी अपने दिल को बड़ा करना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं खुद भी अक्सर सोचती थी, मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर सोचती हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जितनी भी दुआएं की, जितनी भी कुर्बानियाँ दीं, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि फ़अतम्महुन, हमने जब इब्राहिम को जब जब आज़माया, व इज़ बतला इब्राहिम, कि जब जब इब्राहिम को आज़माया गया वो उसमें पूरे उतरे। लेकिन मैं देखती हूँ कि उन्होंने जितनी भी कुर्बानियाँ अपनी ज़िंदगी में दी हैं उनकी जो रिवॉर्ड्स हैं वो उनको कब मिले हैं। उन्होंने अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए दुआएं की हैं वो उनको कब मिली हैं, उनके जाने के बाद। आज नस्लों की फिक्र होती है, बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि नस्लों का क्या होगा। आज हम खुद इतने कमज़ोर हैं, हमारी नस्लों में क्या होगा। आज फितने इतने ज़्यादा हैं, हमारी नस्लों का क्या होगा, उनके ईमान कैसे बचेंगे। तो दुआएं करते रहें, अपनी नस्लों के लिए भी अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह तू मेरी नस्लों की हिफाजत करना, अल्लाह तू मेरी औलाद की हिफाजत करना। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक यही सोचती कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी हो जाए, और दुआएं भी इसी किस्म की होती थी। जब शादी हुई तो अब ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें समझ आ रही, अब समझ के आ रहा है कि अब औलाद की फ़िक्र है, अब नस्लों की फ़िक्र है आगे, कि अल्लाह नस्लों की हिफाजत करना, अल्लाह औलाद नेक हो, सवाले हो। तो अब दुआएं चेंज हो गई हैं, लेकिन ये भी फीलिंग्स आती हैं कि दुआएं कब कबूल होंगी, कैसे कबूल होंगी। फिर आसपास जो माहौल है उसको देखते हैं तो और टेंशन बढ़ती है। यानी हम जहनी तौर में ज़्यादा परेशान, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि होगा क्या। ये सवाल इतना बार बार आ रहा होता है कि होगा क्या और होगा कैसे, और फिर हम भूल जाते हैं कि अन्न अल्लाह अला कुल्ली शय इन कदीर, कि अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। जो रब इब्राहिम का था, जिसने इब्राहिम के जाने के सदियों के बाद भी आज तक, अभी तक वो नेक लोगों की, अल्लाह वालों की, अपने बंदों की हिफाजत कर रहा है, तो वो मेरी भी करेगा, वो मेरी नस्लों की भी करेगा इंशाल्लाह, वो मेरी औलादों की भी करेगा इंशाल्लाह, वो मेरे घर की भी करेगा। बस मुझे अल्लाह वाला बनना है, ऐसा बनना है कि लोग मुझे देखें तो उनको अल्लाह तो याद आए, कम अज़ कम अल्लाह तो याद आए। देखिए कुछ और याद आए ना आए, उनको ये पता चले ना चले कि आप कितना अच्छा तैयार हैं, आपके पास कितना अच्छा सब कुछ है, उनको ये ज़रूर याद आना चाहिए कि ये अल्लाह वाला है, क्योंकि अल्लाह वाले वाकई बहुत कम हो गए। जी सना, बहुत अच्छी बात ये नहीं कि रियाकारी से भी अपने आप को बचाएं, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना है। अब कल किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे ये कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी में ये भी आजमाइश है, ये परेशानी है, ये तकलीफ़ है, ये भी परेशानी है, मैं इतनी आजमाइशों से गुजर रही हूँ, तो सुकून नहीं आता है, आंसू रुकते नहीं हैं, तो क्या करूँ मैं। तो वो कुरान की क्लास में थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सिर्फ उनको इतना कहा, मैंने कहा आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको यहाँ बिठाया हुआ है फिर भी आप रो रही हैं। आपके आसपास कितने लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त पता नहीं किन किन परेशानियों में, वो घरों में ही है लेकिन और भी बेसुकून है, लेकिन यहाँ अल्लाह आपको पहुँचा रहा है, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, कोई बात नहीं, परेशानी ज़िंदगी में आ गई, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखिए, वो देगा आपको, आप परेशान नहीं हों। तो ये जो बात है कि रियाकारी की वजह से भी लोग आएंगे, और वाकई में हम थोड़ी देर कुरान पढ़ते हैं तो थोड़ी देर कुरान पढ़ने के बाद इखलास लेकर आते हैं, अपने अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे खशियत भी अता करे। थोड़ी देर गुजरती है हम किसी और काम में मशगूल होते हैं, हम फिर से हम देखते हैं कि हम अपने अंदर बहुत कमी महसूस करते हैं, फिर अपने आप को निकालते हैं, फिर कमी महसूस करते हैं, फिर निकालते हैं। यानी ईमान आपका बार बार ऊपर नीचे होता है, बार बार ऊपर नीचे होता है। यानी वो हदीस, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हदीस जो है कि कयामत से पहले एक शख्स सुबह मोमिन होगा, शाम में काफिर, शाम में मोमिन होगा, सुबह काफिर। यानी कभी कभी ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं कि कहीं मैं उस दर्जे पर तो नहीं चली गई, कि शैतान इतना एक्टिव है। वो अभी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि वो किस किस तरह से, मैं हैरान थी कि वो पूरे पंजे अपने गाड़ पर हमारे दिल पर बैठा हुआ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको पकड़ के रखें हर वक्त, हमने उससे पीछा छुड़ाना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को लेकर आएँ। हमारी ज़िंदगी में जितना हम अल्लाह को टाइम देंगे, जितना हम अपने अल्लाह के साथ वक्त गुजारेंगे, शैतान का हमारी ज़िंदगी में अमल उतना ही कम होता जाएगा। सीमा ये कह रही है कि हम नसीब पे हर चीज़ डाल देते हैं, हालांकि हमारी दुआओं में कमी होती है, हमें दुआएँ ज़्यादा करनी चाहिए। और फिर हम देखें कि दुआएँ तो तकदीर को भी बदल देती हैं, अगर हमारी दुआओं में वो शिद्दत हो और हम यकीन रखें, बात वही आ गई आखिरकार, बात वही आ गई कि यकीन, और ऐसा यकीन रखें कि अपने आसपास वाले लोगों को भी कहें कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश नसीब हैं यहाँ बैठे हुए ना। मुझे अक्सर ये मैं सोचती हूँ लोगों को डिप्रेशन क्यों होता है, लोग मायूसी में क्यों जाते हैं, ये सवाल अक्सर आता था। लेकिन जब मैं यहाँ खुद इस जगह से निकली तो मुझे दूसरी जगह गई, तो जब मैंने वहाँ लोगों को देखा और फिर जब मैं उस माहौल में थी, तो मैं जब खुद इस चीज़ से गुजरी तो मुझे फील हुआ कि वाकई में लोग डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन क्या होता है ये अब समझ में आ रहा है। और जब मैं अपने आप को जब मैंने खुद उस चीज़ से निकाला अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे हुआ कि ये सिर्फ मुझे अपने लिए तो नहीं करना है, मुझे अपने आसपास के लोगों के लिए भी करना है। मुझे उनको सबसे अहम चीज़ कि अल्लाह से जुड़ें, खुद भी अल्लाह से जुड़ें और लोगों को भी अल्लाह से जुड़ें, और अपने तवक्कल में बहुत ज़्यादा यकीन लेकर आने की कोशिश करें, तवक्कल को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करें, और देखें अपने आप से सवाल भी करें कि मैं कितने अल्लाह के करीब हूँ। जितने अल्लाह के करीब होंगे उतना यकीन होगा, जितना यकीन होगा उतनी दुआएं ज़्यादा होंगी, जितनी दुआएं ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह उतना दिल में और जहन में सुकून होगा, भले ज़िंदगी में कमियां हों इंशाल्लाह दिल मुतमईन होगा आपका। अल्लाह ताला हम सबको इस इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.